जय कुंजबी हरी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी ऊंचा गाइए यशोदा नंदन जय प्रजजन रंजन जय प्रजजन रंजन यशोदा नंदन जय प्रजजन रंजन जय जमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय कुंज राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गौर हरि वो हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितारेण भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण दलिता श्रीविशाखान्वितां जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गतिः मदसर्वस्वपादाम्भोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिनी सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुर्स्वनैर्गोपी गोपीनाथ प्रिये सुनः कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। सुन्दरते ध्यान उभे विठेवरी करकटावरी ठेवनिया तुलसी हर गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान। मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहीन श्री मुख आवडीने। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय ओम कृष्ण पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दर्शन श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदी गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगामय जमुनामय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। इस्कॉन स्वर्ण जयंती महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और गुरुशुभ संबल्दी घोड़ी समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस्कॉन जो 50वा वर्ष मराठी हिंदी का है अपन की भाषा हिंदी तुला हिंदी है का हिंदी भाषी है कोई हिंदी भाषी जो मराठी नहीं जानते ऐसे दुर्लभ होंगे। हिंदी भाषी है और अमरावती में रह के मराठी नहीं जानते। तो हिंदी में तो
વાત હોય ગઈ. રુકમણી દ્વારકાધીશ મંદિર મેં આપકા સ્વાગત હૈ. પીછે લિખા હૈ યે ભગવાન કા નિવાસ હૈ, પીછે ભગવાન કા નિવાસ, ભગવાન યહાં રહેતે હૈ. ઉનકા નામ હૈ રુકમણી દ્વારકાધીશ. યે દ્વારિકા હૈ, યે વૈકુંઠ હૈ, ગોલોક હૈ, અમરાવતી કે બીચ મેં. યે યહાં અમરાવતી નહીં હૈ, અમરાવતી વૈસે એક સ્વર્ગ મેં ભી હૈ. અમરાવતી ઇન્દ્ર કી રાજધાની અમરાવતી, અબ ઓર એક રાજધાની કી સ્થાપના આંધ્ર પ્રદેશ મેં ભી હો રહી હૈ, કૃષ્ણા નદી કે તટ પર યા ગોદાવરી, કૃષ્ણા હી હોગી. કૌવા જ્યાં ભગવાન રહેતે હૈ વો સ્થાન ઇસ સંસાર કા અંગ નહીં રહેતા, વૈકુંઠ બનતા હૈ. તો આપકા સ્વાગત, યહાં સ્વાગત મતલબ આપકા સ્વાગત કહા હો રહા હૈ, વૈકુંઠ મેં સ્વાગત હો રહા હૈ. ઓર એક દિન એસા આ જાય આપ સચમુચ, મતલબ યે નહીં કે ઝૂઠ મૂઠ કા નહીં હૈ આપકા અભી કા યહાં આના યા ઉપસ્થિત રહેના, યે ભી સચ હૈ. લેકિન ઇસ વક્ત આપ અપને શરીર ભી લેકે બેઠે હો, શરીર મેં હૈ આત્મા. લેકિન જબ વૈકુંઠ મેં આપકા સ્વાગત હોગા, વૈકુંઠ મેં, તો વહાં પર આપકા શરીર નહીં હોગા. જૈસે આપ અભી દિખતે હો વૈસે નહીં દિખોગે વહાં. આત્મ સાક્ષાત્કાર, ભગવત સાક્ષાત્કાર કહી પરિણામ ફલ હૈ વૈકુંઠ ધામ કી પ્રાપ્તિ, વૈકુંઠ મેં પ્રવેશ. જૈસે તુકારામ મહારાજ કા હુઆ, જૈસે ધ્રુવ મહારાજ કા હુઆ, જૈસે અજામિલ કા હુઆ, એસે કઈઓં કા, અસંખ્ય જીવોં કા એસા પ્રવેશ હો ચુકા હૈ. અબ બારી આપકી હૈ, એસી તૈયારી તો આપ તૈયારી મેં લગે હો. હરે કૃષ્ણ. મહાજનો એન ગત સપંથ, મહાજનો ને જો ગયે હૈ, મહાજનો એન ગત, મહાજન જિસ માર્ગ સે ગયે, વહી પંથ વહી પથ પર હમ રહેંગે તો હમ ભી કહાં પહોંચેંગે, વહી પહોંચેંગે જ્યાં મહાજન પહોંચે, જ્યાં ગુરુજન પહોંચે હૈ, જ્યાં શ્રીલ પ્રભુપાદ પહોંચે હૈ. તો વાહ, તો વહી માર્ગ દિખાતા હૈ યે ભાગવત ધર્મ, ભાગવત માર્ગ, ભાગવત સિદ્ધાંત, શ્રીમદ ભાગવત કથા. તો ઇસકા નિત્યમ ભાગવત સેવયા કરેંગે, નિત્ય ભાગવત, નિત્યમ ભાગવત સેવયા, તો ફિર ક્યા હોતા હૈ, ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર ભવતી નૈષ્ઠિકી, ભક્તિ પ્રાપ્ત હોતી હૈ શ્રીમદ ભાગવત કે નિત્ય શ્રવણ કરતા કો, ભક્તિ પ્રાપ્ત હોતી હૈ. કિસકી ભક્તિ? ભગવતી, ભગવાન મેં, શ્રી કૃષ્ણ મેં, રુકમણી દ્વારકાધીશ મેં, ઉનકે ચરણો કી ભક્તિ પ્રાપ્ત હોગી. नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठावान, और फिर वहाँ से और भी आगे बढ़ोगे आप ये नित्यम भागवत सेवया से। तो महाजनों ने दिया हुआ भी ये ग्रंथ है। तो वह श्रील प्रभुपाद संसार को यही ग्रंथ दिए हैं। जब विदेश गए 50 वर्ष पूर्व, 51 वर्ष पूर्व, तो कौन सा ग्रंथ साथ में ले गए? भागवतम और भगवद गीता, भागवतम, ताकि भागवत धर्म की स्थापना हो। ग्रंथ भागवत ग्रंथ, धर्म भागवत धर्म, और सब भागवत विद्यापीठ, भागवत 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 प्रसाद भी कहते हैं। भगवान के संबंधित कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भी सिखाता है सिद्धांत, भगवान कौन है। तो वह आज पढ़ेंगे तृतीय स्कंद, भागवत के तृतीय स्कंद के द्वादश अध्याय के 36वां श्लोक और 37वां श्लोक भी पढ़ना होगा, 38 श्लोक तक जो फलक पर लिखा हुआ है। वहाँ पहुँचने के पहले और दो श्लोक है जिसका तात्पर्य नहीं है, इसलिए यहाँ पहुँचेंगे और फिर इसका तात्पर्य पढ़ के फिर आगे कुछ चर्चा होगी। तो हुआ विदुर और मैत्रेय मुनि का ये संवाद हो रहा है हरिद्वार में, गंगा के तट पर बैठे हैं। मैत्रेय मुनि अभी अभी लौटे हैं, कहाँ से, क्या कौन सा क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र से, प्रभास क्षेत्र जहाँ से भगवान ने प्रस्थान किया अपने धाम। तो जिस व्यक्ति को अंत में मिले, फिर उसके उपरांत और किसी को नहीं मिले भगवान, ऐसे व्यक्ति थे मैत्रेय मुनि। और उद्धव भी थे, वैसे दो थे, तो दो में से एक मैत्रेय मुनि है, और उनकी मुलाकात हुई है विदुर जी से। विदुर आप जानते हैं, विदुर जो स्वयं ही यात्रा भ्रमण कर रहे हैं, तो उनका मिलना जुलना होता है मैत्रेय मुनि से। तो भक्त तो एकत्रित होते हैं तो फिर कथा प्रारंभ होती है भगवान की, बोधयंतः परस्परम चलता है, बोधयंतः परस्परम, ऐसा भगवान का है। मेरे भक्त जब एक दूसरों को मिलते हैं तो टॉपिक क्या बनता है, मैं टॉपिक बनता हूँ, और बोधयंतः परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर मेरी कथा होती है जो संतुष्ट करती है कथा वाचक को भी, कथा श्रवणकर्ता को भी, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये दोनों महानुभाव जब मिले तो उनका संवाद चल रहा है। कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि जो हुई, सृष्टि के प्रारंभ में वो चर्चा, बहुत सारी चर्चा है। इस चर्चा से कई सारे स्कंद भरे पड़े हैं, चलती रही चर्चा। मैत्रेय मुनि और विदुर संवाद के कई अध्याय, कई सारे अध्याय भागवत में हैं। तो विदुर उवाच, विदुर जी ये जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य अब तो मनुष्य बने हो, इसीलिए क्या करो। अथ, अथ मतलब अब, अथ अब, अतः इसलिए, तुम मनुष्य बने हो इसलिए अब क्या करो, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के संबंध में, परमा या पर ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा, कुछ पूछताछ, कुछ चर्चा संवाद। तो विदुर जी, विदुर उवाच, स वै विश्व सृजामीशो वेदादिन्मुखतो सृजत् यद्यदेना सृजत् देवस् तन्मे ब्रूहि तपोधना। इसको थोड़ा कम करना होगा, बंद करना होगा, केवल एक पंखे को थोड़ा कम करो या बंद करो। अनुवाद, विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे ये बतलाए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। तो वह मैत्रेय बता चुके हैं, बता रहे हैं। चातुर्होत्रम, कल का श्लोक में यज्ञ की चार प्रकार की सामग्री और धर्म, उसके चार पाद, सत्य तप दया शौच, चार आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए, ऐसा पिछले श्लोक में कहा है। चारों मुखों से ज्ञान या प्रकट हुआ, चारों वेद प्रकट हो रहे हैं, ये सब अभी अभी सुन चुके हैं विदुर जी, और अभी अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो वह कि ब्रूही, आप कहिए, और उनको संबोधित कर रहे हैं मैत्रेय मुनि को, तपोधना, आपका धन कौन सा धन, आपका तपोधन, तपस्या ही जिनका धन है। ऐसे तपोधन आप हमें सुनाइए, कृपया बतलाइए, ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उन वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो वैदिक ज्ञान उनके मुख से निकला था। तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। ऋग्यजुसामार्थ सामार्थवाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शास्त्रमिज्ञां स्तुतिस्तोम प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। मैत्रीय ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर, ब्रह्मा के कितने मुख है, सामने वाला मुख है, इसे प्रश्न उठ सकता, सामने वाला क्यों कहा, मुख तो सामने ही होता है, क्या बगल में या पीछे होता है क्या, तो हाँ होता है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है, वैसे पंचमुखी भी है, दस मुखी भी है, शतमुखी ब्रह्मा भी है और सहस्रमुखी ब्रह्मा भी है। जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जाएगा, कल किसी के कार के पीछे पढ़ने को मिला, हम जब जा रहे थे ब्रह्मांड नायक, आपके नगरी में ब्रह्मांड नायक, और शायद कार का मालक तो नहीं होगा, क्या समझता होगा मैं ही ब्रह्मांड नायक, शायद वो सोच ही रहा होगा ब्रह्मांड नायक है भगवान, कैसे है ब्रह्मांड नायक। और कितने ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, और हर ब्रह्मांड में फिर एक एक ब्रह्मा जन्म लेते हैं, लेते नहीं जन्म देते हैं उनको भगवान, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा को जन्म दिया जाता है, एक एक ब्रह्मा को। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, मोटापन बढ़ेगा उस ब्रह्मांड का, उसी के साथ ब्रह्मा के मुखों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसीलिए हमारे ब्रह्मा के केवल चार ही मुख है, 4000 नहीं है, लेकिन 4000 मुख वाले ब्रह्मा भी है। तो उनके सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद, ऋक् यजु साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र पौरोहित्य अनुष्ठान पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। तो ब्रह्मा के ये पूर्व मुख है, पूर्व या पहला, फिर ये दक्षिण मुख है यहाँ पर, और पीछे वाला पश्चिम मुख हुआ, और इधर है उत्तर मुख। तो हुआ चार वेदों के नाम लिखे हैं यहाँ, कहे हैं का वेदान पूर्वादि मुखाभिर, पूर्वादि भीर मुखई ही, पूर्वादि मतलब इत्यादि, पूर्व फिर दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये सभी मुखों से मुखों के द्वारा ये चार वेद ऋग यजुस साम अथर्व वेद क्रमशः उत्पन्न हुए। आयुर्वेदम और भी कुछ उत्पन्न हुआ कि नहीं, तो हुआ ही है, तो उसको आगे कहा जा रहा है। ओके, आज ये श्लोक अभी आ गया, तो पीछे कहना होगा अब आपको। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चास्रजद्वेदं कृमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। आयुर्वेदं धनुर्वेदं गांधर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चास्रजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः।
आयुर्वेदम धनुर्वेदम
आयुर्वेदम धनुर्वेदम
गांधर्वं वेदमात्मनः
गांधर्वं वेदमात्मनः
स्थापत्यं च सृजद्वेदम
स्थापत्यं च सृजद्वेदम
क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः
क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः
आयुर्वेदम धनुर्वेदम
आयुर्वेदम धनुर्वेदम
गांधर्वं वेदमात्मनः
गांधर्वं वेदमात्मनः
स्थापत्यं
च सृजं वेदम्
क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः
क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः
आयुर्वेदं
धनुर्वेदम्
गांधर्वं वेदमात्मनः
स्थापत्यं च सृजं वेदम्
क्रमात्
पूर्वादिभिर्मुखैः आयुर्वेदं धनुर्वेदम् गांधर्वं वेदमात्मनः
Okay, माता है आयुर्वेदम औषधि विज्ञान धनुर्वेदम सैन्य विज्ञान गांधर्वम संगीत कला वेदम ये सभी वैदिक ज्ञान है आत्मनः अपने से स्थापत्यम वास्तु संबंधी विज्ञान च भी असृजत सृष्टि की वेदम ज्ञान क्रमात् क्रमशः पूर्व आदि भी सामने वाले मुख से प्रारंभ करके मुखैः मुखों द्वारा उन्होंने औषधि विज्ञान सैन्य विज्ञान संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान या विज्ञान भी सृष्टि वेदों से की ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए वो भी चार थे वेद और इसके पहले वाले श्लोक में और ये उपवेद हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसका उल्लेख होगा ही तो उपवेद विचार है तो क्रमात् पूर्वाधिमुखी पूर्वाधिभिर्मुखी तो वे भी क्रमशः पूर्व मुख पहला मुख से फिर आयुर्वेद दक्षिण मुख से धनुर्वेद और पश्चिम मुख से गांधर्व वेद और उत्तर मुख से स्थापत्य वेद प्रकट हुए तात्पर्य वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है तो वेद मतलब ही ज्ञान है ज्ञान है सारा संपूर्ण ज्ञान जिसमें न केवल इस लोक के अपितु अन्य मानव लोगों के समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। ज्ञान और अज्ञान भी, या पराविद्या और अपराविद्या दोनों। संपूर्ण ज्ञान वेदों में, वेदों से प्राप्त है। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है। समाज है तो इसी वैदिक या वेदों में जो ज्ञान उपलब्ध कराया है उसके अनुसार समाज की व्यवस्था को भी समझाया है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभुपाद क्या लिख रहे, सैन्य कला की आवश्यकता है और कलाओं की भी आवश्यकता है। यह समाज का विभाजन किया, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था, तो समाज में ब्राह्मण होंगे, समाज में क्षत्रिय होंगे, समाज में वैश्य होंगे, समाज में शूद्र होंगे, इसको टाला नहीं जा सकता। तो उसके ऐसा भी ज्ञान मिलेगा ब्राह्मणों के लिए ज्ञान, वैसे ज्ञान तो प्राप्त करने वाले, पढ़ने वाले, पठन पाठन यजन याजन, ये ब्राह्मणों का ही कार्य है। और फिर वो शिक्षा देंगे या गुरुकुल में, ऐसी व्यवस्था, फिर शास्त्रों का ज्ञान, फिर साधु देंगे, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदंतो गुरोहितम। और ये जो समाज का विभाजन, वेल चार वर्णों में और चार फिर आश्रमों में, हमारा आयु चार हिस्सों में इसका यह विभाजन होगा, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था का सब ज्ञान भी वेदों में, वेदों से ही आता है। और समाज की सारी व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, फिर ब्राह्मण ज्ञान को अर्जन करेंगे, पढ़ेंगे शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, या वेदों को, उपवेदों को, और भी वेदांग को भी, और उसको तो वेद का ज्ञान का ऐसा वितरण या पठन और पाठन समाज में या फैलाया जाता था या सिखाया जाता था। जिस तरह संगीत कला है के, और एक उल्लेख प्रभुपाद की जो गांधर्व कहा है, आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम स्थापत्यम, चार उपवेद कहे हैं इस श्लोक में। ज्ञान के ये सारे समूह उपपुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं या उपवेद कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है, किंतु मनुष्यों के ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता पहुंचाने के लिए अन्य जानकारी वैदिक ज्ञान की आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है, जैसे कि ऊपर कहा गया है। तो चार वेदों के नाम सुने हमने, चार उपवेदों के नाम सुने, तो छह वेदांग भी है। छह वेदांग very well. वेद का ज्ञान तो प्राप्त हुआ, लेकिन फिर उस ज्ञान को समझना है तो उसकी व्यवस्था की हुई है, उसके लिए भी शास्त्र बनाए हैं, वो भी ब्रह्मा के मुख से निश्चित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन सारा ज्ञान जो या अलग अलग वेद ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ ब्रह्मा के दिमाग से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। ये ज्ञान ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। ये सारे वेद, उपवेद, वेदांग, ये अपौरुषेय कहलाते हैं। अपौरुषेय, इसकी रचना किसी ने नहीं की। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जैसे भगवान अनादि है, भगवान का कोई आदि नहीं है, तो भगवान ही वैसे इस ज्ञान के रूप में, ये जो शास्त्र है, ये ज्ञान है, ये भी भगवान ही है, भगवान ही है ये सब शास्त्र। इसलिए फिर कहा है श्रीमद् भागवत एक वांगमय मूर्ति है, वांगमय मूर्ति, वाक, वाक मतलब वाणी, शब्द, वाक्य। तो अलग अलग जो भागवत के जो वाक्य है, तो भगवान वांगमय मूर्ति है। जब हम सारे शास्त्र पढ़ेंगे उसे भगवान का रूप बनेगा, भगवान रूप धारण करेंगे इन शब्दों से, इन वाक्यों से, ये भगवान से अभिन्न है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेदवित् च अहम्, भगवान कहते हैं। वेदों की रचना मैंने की और वेद मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मैंने ही रचना की है इन वेदों की, और मुझे जानने के लिए वेद है। तो वेदांत कृत, वेद का रचयिता, वेद का कर्ता भगवान श्री कृष्ण कह के मैं हूं, तो ब्रह्मा को क्रेडिट नहीं मिलेगा। ब्रह्मा यह माध्यम बन रहे हैं, मीडियम बन रहे हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उनके हृदय प्रांगण में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। और पहले ही जो सृष्टि के पहले, फिर ब्रह्मा के सृष्टि के पहले भी ये ज्ञान का अस्तित्व बना रहता है। ज्ञान या वेद कोई बनाते नहीं, वेद शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत है, तो ये वेद भी शाश्वत है। और ये भी, ये वेद या ये शास्त्र भी, ये भी एक एक उनका भी व्यक्तित्व कहा है। जब भागवत कथा हो रही थी हरिद्वार में, अचार कुमार उस भागवत कथा के कथाकार, कथावाचक, और भक्ति देवी इत्यादि भी श्रोता बने थे, तो उस कथा में कई सारे श्रोता पहुंच गए तो वहां लिखा है, सारे शास्त्र भी वहां पहुंच गए और शास्त्रों के लिए दीज सीट्स आर रिजर्व, ये इस पुराण के लिए है, ये उस पुराण के लिए, ये इस पुराण के लिए, ये इस पुराण के लिए, ये इस वेद के लिए ये सीट है ये। तो वह ये शास्त्रों का भी मूर्तिमान बनते हैं, शास्त्र मूर्तिमान रूप धारण करते हैं, तो उनका अपना भी रूप है। और ये शास्त्र नहीं होते, वेद नहीं होते, वेद की वाणी नहीं होती। फिर आगे पंचम वेद भी है, महाभारत है, या उसी प्रकार का रामायण भी है। इतिहास कहते हैं इतिहास, इतिहास तो रामायण एक इतिहास है, महाभारत एक इतिहास है, इसको पंचम वेद कहा है, पंचम पांचवा वेद। तो वेद में जब हम वेद कहते हैं तो वेद में भी चार अलग अलग उसके विभाग है, उसको अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद और संहिता, ऐसे चारों वेदों के चार अलग अलग विभाग भी मिलेंगे। उसका विभाजन चार प्रकार से, हर वेद का, चारों वेदों में, चारों वेदों में आपको संहिताएं मिलेगी, चारों वेदों में उपनिषद मिलेंगे। तो उपनिषद कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, उपनिषद वेद का ही अंग है, चारों वेदों के उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, ओम उपनिषद, कुछ उपनिषद आयुर्वेद का में ना, ऋग्वेद के कुछ, यजुर्वेद के कुछ, सामवेद के कुछ, अथर्वेद के उपनिषद है, संहिता भी है और अरण्यक भी है और ब्राह्मण भी है। और फिर उसके ब्राह्मणों में क्या मिलेगा, अरण्यक में क्या मिलेगा, उपनिषद में क्या और संहिता में, ये सारी पूरी उसके साथ समझ है। तो उपनिषद फिर श्रील व्यासदेव अभी तो हम यह सुन रहे हैं ब्रह्मा के मुख से सारे वेद पुराण उत्पन्न हुए, अवेद उपवेद वेदांग और भी, कल और परसों अभी आप आके श्रवण करोगे भागवत का, तो आगे और कौन कौन से ग्रंथ या शास्त्र ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए उसकी सूची, उसकी लिस्ट भी आपको सुनने को मिलेगी। ये तो हम लोग अभी मध्य में ही है इस विषय के। तो ये वेद ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, वेद अपौरुषेय है, वेद शाश्वत है, ऐसा समय नहीं था जब वेद नहीं थे। सृष्टि होती है, प्रलय होता है, लेकिन वेद तो बने रहते हैं जो अपौरुषेय है। तो यहाँ ब्रह्मा को प्राप्त हो रहे हैं, ब्रह्मा को ज्ञान या साक्षात्कार हो रहा है उस उन उन शास्त्रों का, वेदों का, आगे पुराणों का। तो वे शिक्षित हो रहे ब्रह्मा, ब्रह्मा भी जन्म तो हो गया लेकिन अभी मैं कौन हूं से शुरुआत और मुझे क्या करना है ये कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब तो उनको बताना पड़ा, धर्म का ही एक महा एक विशेष विधि या अंग का कहता, उन्होंने दो अक्षर सुने त प, वो जब बड़े उत्कंठित थे, जिज्ञासु थे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहिए, ब्रह्म जिज्ञासु थे, तो उनको और किसी स्रोत से और किसी व्यक्तित्व से व्यक्ति से उनको दो अक्षर सुनने को मिले, एक था त और दूसरा था प, और त प त प त, मुझे तपस्या करनी चाहिए, ये भी उनको इसी के साथ साक्षात्कार हुआ। तप तप सुन भी लिया, इसको तपस्या करनी चाहिए, तो तपस्या की ये ब्रह्मा, तो तपस्या से तपोधन जैसे यह कहा है इस श्लोक, पहले के श्लोक में, तो हुआ उस तपस्या के धन को प्राप्त किए तो उसे शुद्ध हुए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम, भागवत में ही कहा है। कोई तपस्या करता है फिर तो धर्म का शास्त्र का ही वचन तप तप तप, तो तुरंत ही जीव को बताया जाता है, ए तुम ये करो तुम ये करो, अदरवाइज नहीं तो जीव को पता ही नहीं चलेगा कि आगे करना क्या है, कैसे हिलना डुलना चलना, जो हर कार्य जो है कौन सा कार्य और कैसे करना है, उसे ब्रह्मा को सृष्टि भी करनी है तो उसका ज्ञान भी तो कहाँ है। तो वो भी वेदों से स्थापत्य शास्त्र है, या स्थापत्य, आर्किटेक्ट, डिजाइन, इंजीनियरिंग, ये सब स्थापत्य। तो स्थापत्य वेद जो उपवेद है उसका भी जब उनको आकलन हुआ या श्रवण किया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा भी, उसको श्रवण किया और फिर कीर्तन किया, उन्होंने पहले सुना, तो उनसे तो वो निर्मित नहीं है ये सब शास्त्र वेद पुराण, तो भगवान, जो भगवान से ही उत्पन्न ये जो ज्ञान है वेद है वे सुने, फिर ये भी सुनने पढ़ने मिलता है कि भगवान ने अपनी मुरली बजाई और ये जो गायत्री है, गायत्री के मंत्र भगवान ने ब्रह्मा को सुनाए, तो अपनी मुरली की नाद से उन्होंने ये गायत्री का नाद, गायत्री के मंत्र उत्पन्न किए और उनको पहुंचा दिया जहाँ ब्रह्मा थे, ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, उसका श्रवण किए। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा की दीक्षा हुई, गायत्री दीक्षा, एक हरि नाम दीक्षा, भागवत दीक्षा और फिर औपचारिक ऑफिशियल दीक्षा, वो गायत्री दीक्षा कहलाती है। तो वह भगवान ने वो मंत्र सुनाए ब्रह्मा को, तब उनको ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ। हरि हरि। तो ये फिर कहते हैं कि जैसे कोई या कोई भी माइक्रोफिल्म बनता है तो उसके साथ मैनुअल आता है, उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे खोलना है, उसकी उसको कैसे दुरुस्त करना है, रिपेयरिंग करना है, वायरिंग कैसे करना है, कनेक्शन कैसे, जो जो भी डिटेल्स है कैसे मेंटेन करना है, ऐसा करोगे तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, सावधान, कॉशन, तो दोनों बातें बताई जाती है, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये विधि है ये निषेध है, तो इसको मैन्युअल कहते हैं, मैन्युअल। आजकल तो खूब मैन्युअल, सुपर बाजार में हर प्रोडक्ट का मैन्युअल, ना ब्रश भी लोगे तो उसका भी मैन्युअल है। तो ये जो सारी सृष्टि बनने वाली है। सृष्टि के अंदर अंतर्गत फिर 84 लाख योनियां भी बनने वाली है, उसमें विशेष योनि रहेगी, मनुष्य योनि रहेगी, उनको आगे कुछ कार्य करना है। वो कैसे कार्य करना है या किस उद्देश्य से कार्य करना है, मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या है, या फिर भगवान तुम आत्मा हो ये भी ज्ञान, या परमात्मा भी होते भगवान भी होते हैं, उनका धाम भी होता है, और फिर संभवामी युगे युगे भी होता है, ये सारा कैसे पता चलेगा जीव को या मनुष्यों को अगर शास्त्र नहीं होते। कल्पना करो शास्त्र नहीं होते तबे की होते, तबे की होते, यदि गौर न होते तो की होते। राधार महिमा सार सीमा जगत जानाते के, ऐसा कहा। और चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा नहीं होता, कीर्तन नहीं किया होता ये नहीं, तो संसार उस राधा के भाव को कैसे जानता, ऐसा कहा है। राधा के या माधुर्य रस की जो सीमा है कोई सीमा ही नहीं है, उसको संसार कैसे जानता, तो संसार को राधा का भाव भक्ति सिखाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और उन्होंने बहुत कुछ कहा और किया, और उसको लिखा गया फिर चैतन्य चरितामृत में। अब तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट लीला तो नहीं है, लेकिन आज भी हम चैतन्य चरितामृत पढ़ के जो शास्त्र है उसको समझ सकते हैं, राधा भाव को समझ सकते हैं, राधा को समझ सकते हैं, या राधा को समझने के लिए भगवान प्रकट हुए, वो प्राकट्य है चैतन्य महाप्रभु का। राधा को राधा भाव सुवलितम, भगवान जानना चाहते थे राधा को, तो वो जानते जानते फिर वो कैसे जान गए और क्या जान गए, फिर उसकी रचना हुई, इसको लिखा गया। फिर पुनः श्रील व्यासदेव आए, उन्होंने रचना की। व्यासदेव 500 वर्ष पूर्व भी प्रकट हुए थे, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, तो श्रीमद् भागवत की रचयिता, केवल रचना की है श्रीमद् भागवत की या वेदों की या पुराणों की श्रील व्यासदेव ने भी, वो ज्ञान को निर्माण नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया, वो एग्जिस्ट कर ही रहा था पहले, वो ज्ञान था ही, बस उसको तो भगवान ने कहा ये सब वेदों की वाणी अपौरुषे, ये सारे ग्रंथ शास्त्र, और फिर ब्रह्मा सुने, जो सुने थे वो उसको कहे, नारद जी से कहे, ब्रह्मा नारद फिर और भी परंपरा के आचार्य, और फिर मध्व, फिर सारी परंपरा है, और चार वैष्णव परंपराएं भी है, तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ऐसा समय एक था कि यह ज्ञान को केवल शास्त्रों के वचनों को कहा जाता था, और फिर श्रोता शिष्यगण कहो श्रोतागण उसको सुनते थे, तो उसी के साथ उनको ज्ञान होता था। ऑफ कोर्स वो ज्ञान को फिर विज्ञान उसका अनुभव भी करना है, उसके जो जो कहा है विधि है उसके अनुसार अगर कार्य करेंगे तो उसका साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा। ज्ञान ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ज्ञान का फिर विज्ञान में उसको परिवर्तित करके फिर गुरुजन फिर और अपने शिष्यों को सुनाते, फिर उनके शिष्यों को। तो इस परंपरा में ये इसको श्रुति या परंपरा, मतलब एक समय ये ग्रंथ नहीं थे, लोग सुनते थे और वे श्रुतिधर हुआ करते, श्रुतिधर जो सुन लिया उसको, मतलब कोई लकीर खींच लिया अपने पत्थर के ऊपर, उसको मिटा नहीं सकते, तो एक बार सुन लिया तो फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी जैसे आपका कैमरा और जो अंदर की जो फिल्म है, तो जो भी दृश्य है सेल्फी है आपने खींच लिया, तो वो फोटो क्या करता है, वो फिल्म क्या करती है, उसको मेमोरी में रखते, फोटोग्राफिक मेमोरी। तो 10-20-50 वर्षों के उसका कोई मर्यादा है वैसे सदा के लिए नहीं है, क्योंकि है इसी संसार का कुछ प्राकृतिक होने के कारण अशाश्वतता उसमें है। लेकिन ये जो श्रवण होता था तो उसको जब धारण करते थे तो फिर आत्मा के ऊपर ही या चेतना के ऊपर ही लिखा जाता था, चेतना में ही वो प्रवेश करता, उनके मन में चेतना में उसको हृदयंगम करते हुए, केवल कंठस्थ ही नहीं करते हृदयंगम करते, तो उनके जो सुना था फिर उसका मनन करते थे, मनन होता था, मनन मतलब जो बातें सुनी है उसको मन में पुनः लाके उसको स्मरण करना, मन में उसको बिठाना, स्थापना करना मन में या को अपने कहते कि हमारा चेतना का पटल है, चेतना का पर्दा है, स्क्रीन है चेतना, भावना, कॉन्शियसनेस, उसका एक पर्दा है जैसे टीवी का पर्दा होता, तो उस पर वे लिखते थे, जो सुनते थे वो सब सारा लिखा जाता था, तो हृदयंगम हुआ। केवल संग्रहित ही नहीं करते थे, अक्यूमुलेशन ही नहीं, उसका असिमुलेशन होता था, उसको हजम करते थे, उसको पछाते थे और फिर पक्के हो जाते थे। तो और फिर उस ज्ञान को, तो इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा में वो ज्ञान का वितरण और प्रसारण हुआ करता था। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व उस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना पड़ा, कलयुग आ रहा था, तो कलयुग में लोगों की स्मृति नष्ट होती है, नो मेमोरी, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, कुछ टिकता ही नहीं हमारे, मन ऐसा भ्रम भागता दौड़ता है, जो सुना है ऐसा उड़ जाता है, स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, योगी नहीं है, जो बातें सुनी है उसका ध्यान नहीं करते, उसका चिंतन मनन नहीं करते, बढ़िया से लिखते नहीं हमारे स्मृति पटल के ऊपर, तो योगस्थ कुरु कर्माणि भगवान भी कहे गीता में, योगस्थ योग में स्थित हो जाओ, तो फिर योग कैसे करना है उसका सारा शास्त्र है, उसका सारा ज्ञान है, उसको पढ़ेंगे, अष्टांग योग है, यम है, यम क्या होता है फिर शास्त्र कहेगा, नियम क्या होता है शास्त्र कहेगा, यम नियम आसन क्या होता है सारा या आयुर्विज्ञान के अंतर्गत भी आएगा, आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद। आपके आयु को, लाइफ को अगर कोई जानता है, वेद मतलब जानना, कौन जानता है? आयुर्वेद शास्त्र जो है ये जानता है, या भगवान ही जानता है? भगवान ने ही दिया हुआ ये आयुर्वेद है, तो हुआ उसको पढ़ेंगे, या फिर योग का भी, अष्टांग योग का भी ज्ञान है तो हर एक का ज्ञान होगा। व्यायाम, ये नियम, ये आसन, ये प्राणायाम ऐसे करना है, फिर प्रत्याहार होता है, फिर प्रत्याहार का सब हाउ टू डू इट मैन्युअल, मैन्युअल मतलब हाउ टू डू इट, कैसे करना है। जैसे यह पूछा, मैत्रेय मुनि ने पूछा, विदुर जी ने पूछा कि और आगे क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे स्थापना हुई। तो एट एवरी स्टेप, हर पग पग पर, जैसे हम यहां सुन ही रहे कि वेद मतलब संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान टोटल। तो प्रत्याहार है, फिर ध्यान है, फिर धारणा ध्यान, समाधि। व्हाट इज दैट? वो समाधि क्या होती है, या समाधि में कैसे स्थित व्यक्ति होता है, या अर्जुन ने पूछा वो समाधिस्थ केशवा तस्य का भाषा, वो कौन सी भाषा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या उसके लक्षण है, अर्जुन ने भी पूछा। तो हुआ ये सारा ज्ञान, फिर ये ज्ञान जो शास्त्रों का, ये वेदों का, उपवेदों का, वेदांग का, और भी शास्त्र के प्रकार है, तो इसकी मदद से वैसे लक्ष्य फिर योग है। योग मतलब लिंक है, किसके साथ लिंक? भगवान के साथ। हम जो बिछुड़ गए हैं, हम जो भूले भटके जीव है संसार में, तो भगवान ने शास्त्र दिए हैं, धर्म शास्त्र भगवान ने शास्त्र दिए हैं। तो उद्देश्य क्या है? वेदेश सर्वे अहम एव वेद्या, मुझे जानने के लिए वेद है। तो जिसने जान लिया और फिर जान के भगवान को, जान के फिर भगवान के साथ कैसे व्यवहार करना है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान गीता में कहे, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा अर्चना करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। फिर अर्चना पद्धति भी है, हम अर्चना करना चाहते लेकिन कैसे करें अर्चना, अर्चना पद्धति के सारे शास्त्र होंगे, वेद है। तो स्थापत्य शास्त्र के अंतर्गत बिल्डिंग एंड ये रोड का ये इतना ही नहीं है, फिर भगवान के विग्रह की, जब विग्रह की मूर्ति को बनाना है उसका भी शास्त्र है, उसका भी नाप है। शास्त्र में कहा अजानुलंबित भुजो, तो भगवान के हाथ कैसे होते हैं, थोड़े अधिक लंबे होते हैं, अजानुलंबित भुजो। शास्त्र में भगवान के 32, भगवान के अंग के 32 अलग अलग लक्षण दिए हैं। भगवान की नाभि गहरी होती है, भगवान की छाती ऐसी विशाल होती है, भगवान के नाखून कैसे होते हैं, भगवान के 7 अलग अलग अंग गुलाबी रंग के पिंकिश होते हैं, या 7 अलग अलग अवयव भगवान के कमल सदृश होते हैं, या कल्पना का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जो कला मूर्तिकार जब मूर्ति बनाएगा तो यह मनोधर्म की बात नहीं, वह धर्म की बात, शास्त्र की बात, सारा सरण, सारी जानकारी, सारा ज्ञान, और भगवान जैसे है वैसा ही लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो उनकी करो, उनका ध्यान करो, मन मना हो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। फिर भगवान कहते ऐसा कोई करेगा तो माम माम एव यशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे। तो ऐसा व्यक्ति फिर मैंने जैसे जैसे कहा है वेदों में पुराणों में भागवत में भगवत गीता में वीर चैतन्य चरितामृत में गौड़ीय वैष्णव और सुनते हैं, तो जैसे जैसे कहा है तो वैसे वैसे तुम करोगे हे मनुष्य, तो माम एव यशसी मुझे प्राप्त होंगे तुम। भगवान गीता के 18 अध्याय में कहे माम एव यशसी सत्यम ते प्रतिजाने, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं मैंने जो भी कहा है अब कहा कह रहा हूं, गीता का उपदेश सुना रहा हूं जो महाभारत के अंतर्गत उसकी उसको स्थापित किया है। तो वेद के वाणी के अनुसार जैसे हम कह रहे थे मैन्युअल है कैसे करना है, कैसे हिलना है, कैसे डुलना है। फिर संगीत, संगीत भी एक बहुत बड़ी कला है, विद्या है, उसका भी पूरा पूरा वेद, एक उपवेद गांधर्व वेद सामवेद के अंदर का सामवेद जो चार वेदों में सामवेद, उसमें आपको ये गायन की सारी कला या ज्ञान का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये सब करेंगे तो फिर व्यक्ति भक्ति योग करेगा, भक्ति योग फिर कर्म योग भी बताया है, वैसे ज्ञान योग भी है, अष्टांग योग भी है, ऐसे सब सब ज्ञान है, कर्म योग का भी है, ज्ञान योग का भी है, अलग अलग स्तर है, अलग अलग हमारे भावों के स्तर है, इस भाव का ये स्तर है, वो स्तर है, वो स्तर है, और भी ऊंचे स्तर है। हम कहते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन कृष्ण प्रेम से या प्रेम के भी प्रकार या प्रेम के भी स्तर शास्त्रों में कहे हैं। रुचि प्रेम के पहले रुचि एक प्रेम का ही प्रकार या स्तर बताया, फिर प्रेम कहा, फिर मान, मान एक अवस्था होती है, मान मान नाम का एक प्रेम का प्रकार है। राधा रानी मान करके बैठती है, मानिनी बनती है, तो वो भी प्रेम का स्तर है। फिर स्नेह, स्नेह यह प्रेम का प्रकार है, प्रेम से जिसको हम प्रेम प्रेम कहते हैं उसी के अंतर्गत यह ऊंचा स्तर है स्नेह का। फिर स्नेह का भी दो प्रकार बताए, ऐसा स्नेह वैसा स्नेह। और फिर प्रणय का, प्रणय श्री राधा प्रणय विकृति राल्हादनी शक्ति रास्मात, प्रणय एक प्रेम का और गाढ़ा स्वरूप है। जब गाढ़ बनता है प्रेम तो उसको प्रणय कहते हैं, लेकिन प्रणय से भी फिर राग है, फिर अनुराग है, फिर भाव है, फिर महाभाव है। जो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश किए और दर्शन करते ही बेहोश हुए, मूर्छित हुए, जग 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 कहते हुए धड़ाम करके गिर गए, लौटने लगे। और फिर वह सारों भट्टाचार्य नामक एक वहां के विद्वान और न्याय इत्यादि शास्त्रों में जो प्रवीण थे, बड़ा व्यक्तित्व था उनका, वे चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर ले गए और वे थोड़ा स्टडी कर रहे थे ये जो लक्षण ये महात्मा उनको पता नहीं था ये कौन है ये। तो उन्होंने कहा ये केवल भाव ही नहीं, ये जो भाव प्रकट कर रहे हैं इसका नाम है महाभाव। महाभावा राधा ठाकुरानी, महाभावा राधा ठाकुरानी। तो फिर हर एक आपको ज्ञान मिलेगा, रुचि मतलब ये, इसके रुचि का ये लक्षण है, इसको प्रेम कहते हैं, उसको स्नेह कहते हैं, ये मान कहलाता है, इसका नाम प्रणय है, इसका नाम राग है, ये अनुराग है, भाव है, ये महाभाव है। और फिर जो दास्य भाव में है वो कहाँ तक पहुंच सकता है, कौन से प्रेम का अनुभव कर सकता है, जो वात्सल्य रस में है और माधुर्य रस में है, ये सब वेदों के अंतर्गत ये सब ज्ञान संभव है। तो इसको इसका अध्ययन करेंगे नित्यम भागवत सेवया। तो व्यक्ति को फिर पता चले, फिर भगवान गीता में कहते हैं योगस्थ व्यक्ति, योगस्थ योग में स्थित हो जाएगा, योग में स्थित हो जाएगा। और वैसे योग में स्थित होके ही गुरु कर्माणि, लोगों को हमको कार्य तभी करना चाहिए जब हम योग में स्थित है। हम वियोगी है या डामाडोल मन की स्थिति है, और हम संभ्रमित है, और ऐसे स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। हम क्रोधित है, क्रोधवश फिर कार्य काम होता है, कामवश कार्य होता है, लोभवश लोभ हमको नचाता है और बिजी रखता है जीवन भर, कमाते जाओ। नो टाइम, मरने को समय नहीं है, इतने व्यस्त चल रहे हैं, कौन व्यस्त रख रहा है? लोभ जो तुम्हारा शत्रु है, मित्र नहीं है, योर एनिमी। काम, जीवन भर काम, काम के वशीभूत होके, काम वश ये कार्य, काम वश वो कार्य। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिवन योजितः। अर्जुन ने पूछा, कभी कभी ऐसा कुछ पाप, ऐसा कुछ कृत्य हम करके बैठते हैं, समझते भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कुछ करवाता ही कुछ। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति, कौन पाप करवाता है? अनिच्छन अपि, कभी कभी जानते कि नहीं उचित नहीं है, नहीं 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 नो 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 नो, लेकिन फिर एंड कर बैठते ही है। तो भगवान उत्तर में कहे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। नोट करो, समझो तुम जानना चाहते हो ना, तो समझो, काम ईश काम है, वो क्रोध है। विधि एनम ही वैरिनम, विधि मतलब समझो, विधि एनम मतलब कामम क्रोधम, इनको समझो, कौन है ये वैरी है तुम्हारे मित्र नहीं है। भगवान से दूर रखने वाले पार्टी है ये, यही तो विघ्न है। तुम और भगवान के बीच में काम है, तुम और भगवान के बीच में क्रोध है, तुम और भगवान के बीच में ये लोभ है। तो ये भी ज्ञान है, ये भी वेद के अंतर्गत बताया। फिर तो इसको जब हम समझेंगे, फिर काम अनर्थ निवृत्ति शात, फिर अनर्थ निवृत्ति करेंगे, अनर्थों से मुक्त होंगे। तो फिर कह निष्ठावान व्यक्ति, निष्ठावान होगा या आचार्यवान, पुरुष वेद ऐसा भी कहा है, वेदों में ही कहा आचार्यवान पुरुष वेद। वेद मतलब टू नो, समझना। तो वह व्यक्ति समझेगा, उस व्यक्ति को ज्ञान होगा जो कौन है आचार्यवान पुरुष। पुरुष मतलब व्यक्ति, जो व्यक्ति आचार्यवान है। आचार्यवान है मतलब जिस व्यक्ति ने आचार्य को स्वीकार किया है अपने जीवन में, मतलब या गुरुजनों को स्वीकार किया है। तो जो आचार्यवान है पुरुष, जो लोग या जो नर नारी आचार्यवान है, तो आचार्यवान कैसे हो? आचार्यवान ज्ञानवान होते हैं, भक्तिमान होते हैं, या उनके हृदय प्रांगण में गोविंद का विश्राम, उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते रहते हैं, वे ज्ञानवान होते हैं, वो तपोधन होते हैं, तपस्वी होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति से हम संपन्न हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में है और उनका हम उपयोग भी कर रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, ऐसा चक्षुदान जिन्होंने हमको क्या दिया, या वो आचार्य क्या करते हैं, चक्षु देते हैं, आंखें देते, दृष्टि देते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं या कुछ कार्य कर सकते हैं। और फिर ये भी कहा कि शास्त्र चक्षुषः, शास्त्र या वेद का चश्मा पहन के कार्य करो। तो जो आचार्यवान है, जो गुरुजन है, जो स्वयं ही ज्ञानवान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तुम्हारे हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। जैसे ब्रह्मा के हृदय प्रांगण में ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है जीवन के प्रारंभ में ही, हो पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञानवान होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जो भी उनको कार्य करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ योग में स्थित हो जाओ फिर कार्य करो। तो हम तो जो आचार्य है, इसलिए कहा साधु शास्त्र आचार्य। तो जो साधु है या आचार्य है, वो हर बात आपको शास्त्र से समझाएंगे, शास्त्र की बात को ही समझाएंगे, ताकि शास्त्र आपका या हमारे जीवन का अनुशासन करे। वैसे शास्त्र, शास्त्र शास नाम का धातु है संस्कृत में शास, तो शास से शास्त्र बनते हैं शास्त्र। तो शास्त्र वो विधि विधान है, विधि निषेध भी है, जो हमारे जीवन का अनुशासन, ये करो ये मत करो, ये कौन बताएंगे? शास्त्र बताएंगे, ये वेद बताएंगे। स्मर्तव्यः सततं विष्णुः विस्मर्तव्य न जातुचित् विधि निषेधासुर एतयोर। तो कहा रह गया उसमें, तो कहा कि यह शास्त्र का उद्देश्य क्या है, ताकि हम सब समय क्या करें, सततम् स्मर्तव्यः विष्णुः, विष्णु का सब समय स्मरण दिलाना, ये एक उद्देश्य है शास्त्र का। दूसरा उद्देश्य, दो ही उद्देश्य बताए, दूसरा उद्देश्य है विस्मर्तव्य न जातुचित, और हम कभी भी भगवान को नहीं भूलेंगे, सदैव स्मरण करेंगे और भगवान को कभी भी नहीं भूलेंगे। स्मृति विस्मृति, तो शास्त्र के जितने भी विधि और विधान है, विधि और निषेध है, विधि निषेध असुर, शास्त्र के जितनी भी विधियां है और निषेध है, ये करो ना ना डोंट डू दिस, ये नहीं करना, तो ये शास्त्र के सारे विधि और निषेध, एतयोर मतलब ये स्मृति और विस्मृति भगवान की, एतयोर एव किंकर, ये सेवक है, किंकर है, दास है, किसके दास है, ये स्मरण, भगवान का स्मरण सदैव करना, भगवान को कभी नहीं भूलना, इसके ही दास है शास्त्र की सारी विधि, सारे निषेध, ये स्मरण और विस्मरण के दास है, यह सारे विधि विधान, ये विधि निषेध का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, भगवान का स्मरण दिलाना, और फिर उसको दूसरे शब्दों में कहा है कि भगवान को कभी भी नहीं भूलना, मतलब ही भगवान का सदैव स्मरण करना। और फिर कहते हैं कि गोपियां को ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, दो ही बातें जानती थी, उनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल, क्या जानती थी, भगवान का सदैव स्मरण एक बात, और दूसरी बात भगवान को कभी भी नहीं भूलना, ऑलवेज रिमेम्बरिंग नेवर फॉरगेटिंग। इसीलिए शास्त्रों का धर्म का आधार भी शास्त्र है, धर्म मतलब कुछ विधि विधान है, साधना है, साधन साध्य, ये सब शास्त्र पर आधारित है। इसलिए प्रभुपाद भी कहा करते, बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ ही आधार है, हम जो भी करते हैं उसको शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, शास्त्र प्रमाण, और फिर उस शास्त्र के प्रमाण को ही कन्फर्म करते हैं, आचार्य कन्फर्म कहा यस यस, या जो भी हम करते हैं वो प्रामाणिक है या ऑथराइज्ड है, क्योंकि शास्त्र में ऐसे कहा है। या भगवान गीता में कहे यह विधिम यह मतलब जो व्यक्ति विधिम शास्त्र उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र के विधि विधानों को ठुकराते हुए टालते हुए भूल के वर्तते कामकारतः, जो व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन कैसे कार्य कर रहा है, शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि को ठुकरा दिया, उसको मारो गोली, कार्य तो कर रहा है, तो फिर भगवान स्वयं कह रहे न स सिद्धि मम आपनौती, ऐसा व्यक्ति कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा हमारे लिए कृष्ण प्रेम या कृष्ण की प्रेममयी सेवा ही सिद्धि है, नहीं तो और भी अष्ट सिद्धियां भी है, तो हमें भ्रमित नहीं होना, सिद्धि मतलब ओ सिद्ध बाबा, ओ क्या क्या करते हैं चमत्कार, तो चलो जाके नमस्कार करते हैं उनको, वो सिद्धि नहीं, न स सिद्धि माँ बाप न होती, न सुखम, वो व्यक्ति सुखी भी नहीं होगा, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के आदेश अनुसार जो कार्य नहीं करता, न स सुखम आपनोति, न पराम गतिम, ओ पराम गति मतलब जाओ देवाचिया गावा, वो जो पराम गति है, भगवत प्राप्ति है, भगवत धाम प्राप्ति है, ये भी प्राप्त नहीं करेगा कौन, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, तो वैसे शास्त्र के विधि को ही नहीं मानता, आचार्यों के विधि को, आदेश उपदेश को नहीं मानता, मतलब ये भगवान को नहीं मानता, भगवान को ही नहीं मानेगा वो, तो ऐसे भगवान को नहीं मानने वाला ही हो गया, नास्तिक हो गया, और धार्मिक हुआ, और धर्म ही नहीं ना, फिर पशु भी समान, पशु के समान ही है, मनुष्य भी नहीं है, तो फिर वो व्यस्त रहेगा, किसमें व्यस्त रहेगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, इसमें व्यस्त रहेगा, जैसे पशु व्यस्त रहते आहार में, उनका बढ़िया से चलता रहता आहार, कोई कोई खेती नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मॉल नहीं है, उनका बढ़िया से खाते पीते रहते हो, ईटिंग आहार निद्रा भी बढ़िया से निद्रा चलती रहती है, लेकिन हम ऐसी निद्रा के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसा स्थापत्य और क्या क्या इंजीनियरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन एंड दिस एंड दैट और क्या क्या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, ये सारे उद्योग में ताकि स्लीपिंग की व्यवस्था हो, घर में क्या ए? जो धार्मिक नहीं है, शास्त्र को न तो सुनता है न तो मानता है, वो पशु है, तो घर तो बना लिया, क्या करता है, आहार करेगा, आहार फिर अभक्ष भक्षण भी करेगा, उसको पता नहीं होगा, आयुर्विज्ञान भी नहीं पढ़ा उसने, आयुर्वेद नहीं पढ़ा, तो क्या खाना चाहिए ये पता नहीं उसको, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो ये खाद्य है ये अनुकूल है शरीर के लिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ, सात्विक आहार, जैसा आहार करोगे वैसा फिर विहार भी होगा, विचार भी होगा, सत्व गुणी वो भी फिर भगवान का भोग लगा के और धर्म बताएगा, नहीं नहीं केवल वेजिटेरियन नहीं बनना है, कृष्णटेरियन बनो, भगवान का भोग लगा के खाओ, तो फिर वो सात्विक से भी ऊंचा शुद्ध सत्व गुणातीत हो गए, गुणातीत, फिर वैसे विचार भी उत्पन्न होंगे, गुणातीत विचार आएंगे मन में, तो आहार निद्रा भय, भय मतलब डिफेंस, ऑल डिफेंस, तो मनुष्य कितना सारा गवर्नमेंट्स और अधिकतर खर्च किस पर होता है, डिफेंस पर, मिसाइल्स एंड व्हाट नॉट, जनता को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन खर्च किस पर हो रहा है, डिफेंस पर, भय रक्षा करने के लिए, तो कुत्तों का उनको हो जाता है, उन्होंने तो ज्यादा तरक्की नहीं की हुई, जो जो निसर्ग ने उनके पास नाखून है, कुत्तों के पास नाखून है, गधे के पास लात है, किसी के पास क्या है, सिंह है, किसी के पास दांत है, तो डिफेंस हो जाता उनका, दे प्रोटेक्ट, रक्षा कर सकते हैं या हमला भी कर सकते हैं अगर आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य ने क्या क्या, एक जस्ट अ फियर, फियर जो है, तो हर आहार के लिए कितनी सारी व्यवस्था, मनुष्य करता आहार, सोचो निद्रा के लिए क्या क्या व्यवस्था, भय, और सबसे अधिक व्यवस्था तो मैथुन के लिए, और इसको मैथुन्यागार भी कहा है। इस ये सारा संसार जो कारागार भी है, मैथुन्यागार भी है, शास्त्र में कहा मैथुन्यागार। आगार मतलब समझे, बस का आगार होता है, बसे ही बसे जहा हो, बस आगार, फैन ही फैन, फैन आगार, आगार संग्रह साठा भंडार। ये संसार का मैथुन्यागार, पग पग पर मैथुन की व्यवस्था, मैथुन स्त्री पुरुष का अवैध स्त्री पुरुष संग की व्यवस्था, ऑल दिस मंडेन म्यूजिक फिल्म सॉन्ग्स एंड सॉरी फिल्म इंडस्ट्री एंड देन टेलीविजन और क्या क्या, द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ी रहती है, शरीर को दुर्गंधित शरीर को सुगंध बनाने का, सुगंधी बनाने का प्रयास होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बड़े बड़े इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का नाम है। और उसका संबंध मैथुन्यागार से अधिकतर है। तो इस प्रकार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सामान्य एतत् पशुभिर नराना, पशु और मनुष्य इनमें सामान्य, ये चार कार्य तो सामान्य, और वो कार्य कैसे कर रहे, शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम अकारतः, सारे शास्त्र की विधि विधान, धर्म कर्म आचार्य भगवान, इनसे हट के तो वह हरी हरी। तो लोगों को या दानवों को पुनः मानव बनाने के लिए और उनमें भक्ति भाव उत्पन्न कराने के लिए, फिर उनको भक्ति योगी बनाने के लिए, ताकि वे युक्त हो जाएंगे भगवान के साथ, उनका मिलन होगा, भगवान की प्राप्ति होगी, इसके लिए ये शास्त्र है, इसके लिए ये वेद है, ये पुराण है, ये महाभारत है, ये रामायण है, वेदांत सूत्र, फिर श्रीमद् भागवत है, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन मिठो बाजे। तो तुकाराम महाराज ने कुछ ही शब्दों में कहा, क्या लाभ है गीता भागवत का श्रवण, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन मिठो बाजे, मिठोबा का भगवान का स्मरण होगा और उसके साथ भी तुम्हारा भी, तुम खुद कौन हो इसका भी स्मरण होगा, के अमी इसका जवाब भी शास्त्रों में मिलेगा, अखबार में तो नहीं मिलेगा। आज की ताजी खबर, कली पुराण, डेली न्यूज़पेपर क्या है, कली का पुराण है, कलयुग का पुराण है, उसमें सब कलयुग की गाथाएं कथाएं, टेररिज्म और आतंकवाद का न्यूज, भ्रष्टाचार का, अनाचार का, व्यभिचार का, दुराचार का, ऑल समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, अरे क्या वर्ड ब्रेकिंग न्यूज, और इतना समाचार, कीपिंग ट्यून विथ द लेटेस्ट, रात और दिन 24 आवर्स चैनल्स चल, रात दिन चैनल्स समाचार, फॉर व्हाट, क्या समाचार, व्हाट इज द न्यूज। जब युधिष्ठिर महाराज का पूछ, व्हाट इज द न्यूज, यक्ष और युधिष्ठिर महाराज संवाद, महाभारत में संवाद आता है, तो का वार्ता, प्रश्न था का वार्ता, तो उन्होंने समाचार क्या कहा जाए, समाचार उनका कि सारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक पात्र है, ब्रह्मांड एक पात्र है और सारे जीव इस पात्र में रखे गए हैं काट के वगैरह, और फिर उसको लगी हुई आग नीचे से तापत्रय, ताप ताप मतलब ज्वाला भी है, त्रास भी है, ज्वर भी है, तापत्रय आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक दावाग्नि तो पात्र है, पात्र में जो हम लोग आप लोग तो आलू और क्या क्या काट के भर देते हो, उसको उबालते हो, पकाते हो, तो युधिष्ठिर महाराज पकाए जा रहे, जीव पकाए जा रहे हैं पात्र में, और तापत्रय का अग्नि है, दावाग्नि है, ऊपर से सूर्य भी तपा रहा है, आजकल वर्षा नहीं हो रही है, दुष्काल चल रहा है, अकाल है, लातूर में कहाँ से जल पहुंचाया जा रहा है, आग लगी हुई संसार को, सब जीव जल रहे हैं दावाग्नि में है। दिस इज द न्यूज, का वार्ता, ये समाचार है। फिर जन्म हो रहा है, मरण भी हो रहा है, बुढ़ापा भी है, व्याधि भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वे दर्शन कर रहे, अनुभव कर रहे, क्या अनुभव है, व्हाट इज द न्यूज, कोई जन्म ले रहा है इज अ न्यूज, कोई मर रहा है इज अ न्यूज, इतनी सारी आजकल व्हीकल दौड़ रही है, इमरजेंसी हो क्या, एम्बुलेंस अति दक्षता यूनिट की ओर दौड़ाया जा रहा है, प्रोग्रेस, कोई MLA कहा कि हमारे क्षेत्र में अभी ऐसी व्यवस्था होगी, आप फोन करो विद इन 20 मिनट्स एम्बुलेंस पहुंचाएंगे आपके द्वार पर, लोग बड़े प्रोग्रेस, थैंक यू। या हमारे गांव में भी 50-60 वर्ष पूर्व बीमारियां कुछ हुआ करती थी, पेट दर्द, सिर दर्द, ऐसे 2-4 दर्द चलते थे, आजकल इतनी लंबी लिस्ट है। और हमारे गांव में भी एक दूसरे गांव से डॉक्टर आता था साइकिल पर बैठ के, आई थिंक एवरी थर्सडे 4 और 6 के बीच में, तो ऐसे भी थर्सडे वो देखता था कोई मरीज नहीं मिलते थे, बेचारा एम्प्टी पॉकेट नाराज होके लौटता। उसी गांव में फिर अस्पताल भी खुल गया, मिनिस्टर्स आए, रिबन कटिंग हुआ, तालियां बज गई, लोगों को लगा कि प्रोग्रेस हो गई, हम भी कुछ कम नहीं है, अस्पताल तो शहरों में हुआ करते थे, अभी हमारे गांव में हो गए अस्पताल, वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। तो जो सादगी का जीवन, सरल जीवन, हवा कैसी रहती थी, नो प्रदूषण, और अभी क्या क्या हमारा ऐसा लाइफ स्टाइल जो डेथ स्टाइल, डेथ की ओर हमें दौड़ा रहा है। तो जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, व्याधि है, इसको कम कर दिया आपने, क्या प्रोग्रेस किया, डेथ रेट तो वैसे ही चल रही है 100%, जितने जन्मे थे या भी डॉक्टर बैठे उनको रिपोर्ट देना पड़ता है, कहते थोड़ा ज्यादा डेथ हो रही, थोड़ी कम करो, Like 100% is guaranteed. लेकिन फिर ऐसी व्यवस्था करो, ऐसा धर्म, ऐसा आचरण, ऐसा लाइफस्टाइल. अभी तो जन्मे हो तो मरोगे, लेकिन पुनः जन्म नहीं. नो मोर बर्थ. पुनर्जन्म न विद्यते. तो पुनर्जन्म ही नहीं तो फिर पुनः मृत्यु भी नहीं. ऐसी व्यवस्था, ऐसी गारंटीड व्यवस्था धर्म की है, कृष्ण भावना की है, शास्त्रों की है. सो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः. तो शास्त्रों में जो विधि विधान दिए हैं, जैसी जीवन शैली, तो फिर जैसे औषधि के बोतल के ऊपर लिखा होता है इसका डोज लेना, लेकिन कैसे? इन कंसल्टेशन सर्जन या डॉक्टर के सलाह से ले लो. तो ऐसी बात गीता में भी कही है. गीता भी, ज्ञान भी एक औषधि है, भागवत एक औषधि है. तो भव रोग, हमको जो भव रोग से जो हम पीड़ित है, रित रोग से जो पीड़ित है, काम रोग से जो पीड़ित है, इससे मुक्त होना है तो औषधि लेनी होगी. तो ये औषधि है, डोसेस है, डाइट भी है, रिस्ट्रिक्शंस है. तो कैसे ले ले? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः. तो परंपरा में आने वाले जो गुरुजन है, आचार्य गण है, इनके इनकी सलाह से, रेकमेंडेशन. हर व्यक्ति का स्थान या स्तर या देश काल पात्र अलग अलग भी होते हैं. डिफरेंट श्लोक्स, डिफरेंट फोक्स, डिफरेंट श्लोक्स कहते हैं. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कुछ बातें हो सकती है. उसके उम्र के अनुसार, उसके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें थोड़ी भिन्न हो सकती है. या इसलिए गीता का श्रवण, भागवत का श्रवण. तो प्रभुपाद जो सोसाइटी बना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, उन्होंने हर प्रातःकाल भागवत का स्टडी, हर सायंकाल भगवद गीता का स्टडी, दिन में भी स्टडी, या भक्ति शास्त्री कोर्स भी हो रहा है, शास्त्र की स्टडी, ताकि आप शास्त्रज्ञ बनोगे, शास्त्र को इसका पालन करोगे. इस पर चर्चा होगी, शास्त्र के वचनों पर, जो भगवान के वचन है, शाश्वत वचन है. सर्वभूत हिते रता, सभी के कल्याण के विषय है. हरे कृष्ण. संसार दावानल, संसार दावानल लीढ़लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम. जब जंगल में आग लगती है तो वर्षा होगी, तभी जंगल में लगी हुई आग को आपके बाल्टी भर पानी फेंक दिया आपने, बुझने वाली नहीं है. इसीलिए कहा है संसार दावा नल, उसमें त्रसित है संसार के लोग. फिर घन घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य, गुणार्णव गुण की खान, जो गुरुजन आचार्यगण गुण की खान होते, गुणार्णवश्य वे बनेंगे छत्र छाया, या बनेंगे बादल बनेंगे, और कृपा की दृष्टि की वृष्टि करेंगे. तो उसी के साथ हमारे जीवन में जो आग लगी हुई है, तप्त जीवनम का तप्त जीवनम, कभी भी रीडितम क्या शुरुआत, तव कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियों ने कहा कि हमारे जीवन में जो तप्त जीवन जल रहा है, आग लगी है, उनकी बात थोड़ी अलग थी। संसार के सांसारिक जीवन में जो आग लगी उस पर उपाय भी क्या है, तव कथामृतम, तव कथामृत, आपकी जो कथामृत है ये बुझाएगा आग को। फिर कथामृत के साथ नामामृत है, जिस नामामृत में सारी कथा भी भरी हुई है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, नित्य सिद्ध शुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, अभिन्नत्वात् भगवान से अभिन्न है भगवान का नाम, भगवान ही है ये नाम। इसकी जब वृष्टि होगी तो गुरुजन हमको मंत्र देते हैं, महामंत्र देते हैं, सारे मंत्रों का शास्त्रों का निचोड़ है ये महामंत्र, शास्त्र तो शास्त्र कहते हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 कतिरन्यथा, और उपाय नहीं, हरिनाम उपाय है। और ब्रह्मा भी एक समय कहे, नारद जी से कहे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इति षोडशकम् नामनाम कली कल्मश नाशनम्, नातः परतर उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। मैं तो वेदों का ज्ञाता हूँ, ब्रह्मा कह रहे, मैं ही पहला व्यक्ति था वेदों को सुनने वाला। तेने ब्रह्म रुदाय आदि कवय, भागवत के पहले श्लोक में ही कहा ब्रह्मा को, पहले व्यक्ति थे वे, अकेले एक ही तो थे ब्रह्मांड में, तो उनको भगवान ने वेद का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, सब ज्ञान। तो वे कहते कि मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, तो सर्व सभी वेदों में ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, न अतः परतर उपाय, न अतः परतर उपाय, इससे बढ़िया बेहतर उपाय कहोगे तो है नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, मैं सुशिक्षित हूँ, वेदों का वेदज्ञ मैं हूँ, और इसीलिए मेरा कहना है, सारे वेद पढ़ने के उपरांत मुझे मेरा ये कहना है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 नाम वाला जो मंत्र, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कली के जो कलमश है, कली के दोष जो है, कलेर दोष निधे राजन, तो ये हरि नाम क्या करेगा, 16 शब्दों का ये जो महामंत्र है, कली कलमश नाशनम, ऐसी क्षमता रखता है ये महामंत्र। ब्रह्मा कहे जो वेदों के ज्ञाता है, और जो सुखदेव गोस्वामी, जो उनका क्या कहना, श्रील व्यास देव के पुत्र और शिष्य भी, तो उन्होंने भी जो वे भागवत को भली भांति जानते थे, उन्होंने भी कहा कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, कलियुग के सारे अवगुण है, दुर्गुण है, लेकिन एक महान गुण है, वो कौन सा है, कीर्तनादेव कृष्णश्च मुक्त संगः परम व्रजेत, ये जो कृष्ण कीर्तन है ये परम भ्रजित, तुम परम धाम पहुंचाने में सक्षम है। और कलेर दोष निधे राज अस्ति एको महान, और क्या कीर्तनादेव कृष्णस्य, उसके पहले मुक्त संग, मुक्त संग या मुक्त संग, ये महामंत्र हमको मुक्त बना सकता है। किसे? संग से, मतलब असत संग से। जो भी असत है, मायावी है, भ्रामक है, इससे मुक्त कर सकता है। उनको सत्संग दे सकता है, सत्संग प्राप्त होगा। और अंत में महाजनो एन गतः स पंथा, उस मार्ग पर हम चलेंगे और भगवत प्राप्ति होगी। नीता गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।